नमस्कार श्रोताओं, मैं मनोहर लाल कश्यप संवाददाता शर्मी वाणी से आज फिर से आपके बीच उपस्थित होता हूं, दिल्ली एनसीआर बहादुरगढ़ हरियाणा से। मेरे सामने CI2 ट्रेड यूनियन से सतबीर जी हैं। सतबीर जी, शर्मी वाणी में हम आपका स्वागत करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका
जी। श्रोताओं को अपना परिचय देते हुए बात बताइए।
आज एक तो हमने जो है ना शहीद आजम भगत सिंह का जो जन्मदिवस है ना उसकी पूर्व संध्या पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था।
सतबीर जी, पहले अपना नाम परिचय और ट्रेड यूनियन के विषय में बताएंगे, उसके बाद।
हाँ जी। हाँ, मेरा नाम कामरेड सतबीर सिंह, उपाध्यक्ष हरियाणा CITU। तो आज जो है भगत सिंह के 116 जन्म दिवस की उसकी पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें क्रांतिकारी रागनिया गीत और बातचीत रखी गई थी उसके अंदर।
जी जी।
और शहीद यादगार समिति हरियाणा और शहीद दसवीं स्मारक समिति की ओर से आयोजित किया गया था। ये पूरे देश में हमारा एक जो है ना शहीदों के अलग अलग दिवस कार्यक्रम, ये 75वीं वर्षगांठ पे जो हिंदुस्तान की जंगे आजादी का जो इतिहास है, साझा संस्कृति, साझा संघर्ष, साझा कुर्बानियों का इतिहास है, आज को सांप्रदायिक ताकत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और इसकी दिशा को भटकाना चाहते हैं। जबकि देश की आजादी के संघर्ष में नारा था भाई, देश के अंदर धन और धरती बटके रहेगी, रात अंधेरी कटके रहेगी, रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए एक समान, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आदमी द्वारा आदमी का, देश द्वारा देश का, तमाम तरह का जो भेदभाव और शोषण खत्म होना चाहिए
जी।
है उसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। देश वो सिर्फ अंग्रेज चले जाएं या काले अंग्रेज आके बैठ जाएं, सिर्फ इतना ही भरनी चाहते थे भगत सिंह। भगत सिंह के तो सपने दूसरे थे, वो देश के अंदर एक शोषण विहीन समाज का सपना उन्होंने समझा था और उसी के आधार पे वो देश की आजादी के लिए टेस्ट फांसी टूट गए थे
जी। सतबीर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या सरकार की तरफ से भी आयोजन किया गया था इसपे या आपकी ट्रेड यूनियन से ही सिर्फ आयोजन किया
गया? नहीं, हमारा ये अकेले ट्रेड यूनियन का नहीं था, इसमें किसान संगठन भी था, मजदूर संगठन भी था, इसमें महिला संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन, अन्य सामाजिक संगठन और तमाम तरह के लोगों ने मिलकर एक शहीद यादगार समिति बनाई हरियाणा के अंदर
जी।
है ये भगत सिंह की जो 100वीं जयंती थी उसके ऊपर हमने शुरुआत की थी इसकी कार्यक्रम की, और अब इस बार 23 मार्च भगत सिंह के शहीद दिवस से शुरू करते हुए हम इसको 26 जनवरी तक मनाएंगे 2023 तक।
सरकार तो अपने 26 जनवरी तक मनाएंगे।
हाँ, तो इसके अलावा हमारा अब जो है ना देश के अंदर ये जो काले बिल हैं इसको लेके, जो मजदूर विरोधी जो बिल हैं उनके खिलाफ, और महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के मसले और आपसी सद्भाव भाईचारा को लेके हमने पूरे देश में एक पूरा अभियान चला 14 से लेके 25 तारीख तक का।
25 कौन सा महीना?
इसी सितंबर में 26 को लास्ट जनसभा हुई हमारी करनाल में, हमने वहाँ गुड़गांव भी करनी थी 25 तारीख को, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से गुड़गांव तो पूरा जलमय हो गया था ना बारिश के चलते हुए, इसलिए गुड़गांव का प्रोग्राम तो हमें पोस्टपोन करना पड़ा। बाकी जैसे हिसार में, करनाल में और सिंध में हमने ये कार्यक्रम किए अलग अलग जिलों के जोनल एरिया के हिसाब से।
अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये प्रतिदिन करेंगे, कल परसों तरसों ऐसे ये?
नहीं, ये हमने जन 14 से शुरू किया था कैंपेन, अलग अलग गांव वाइज मीटिंग, एरिया वाइज मीटिंग करते हुए, एरिया वाइज बड़ी बड़ी जनसभाएं की हैं, जैसे मतलब 23 से शुरू हुआ
जी, 23 को अक्टूबर
ये 26 तक का था, अब एक गुड़गांव की सभा हम अक्टूबर में करेंगे,
अक्टूबर क्योंकि गुड़गांव
देखते हैं अभी वो 8 को करें या कब करें, वो थोड़ा बातचीत जारी है क्योंकि बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गया।
कि आप हमें अवगत कराएंगे?
हाँ, पक्का पक्का जरूर।
और बताइए, क्या रंगारंग कार्यक्रम किया इसमें आपने?
रंगारंग तो जो है ना देश में एक बात चल रही है, जनता ये देख रही है, ये जो बीजेपी जैसी और सांप्रदायिक ताकत जो सरमाएदार प्रस्त है, कारपोरेट प्रस्त है, और फूट डालो राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति का खेल खेल के जनता को लड़ा रही है डिवाइड एंड रूल के रास्ते, इसके खिलाफ एक पूरे देश में आने वाले समय में एक वातावरण बने और तमाम तरह की जो शक्तियां हैं वो एकजुट हों, जिसमें लोकतांत्रिक, वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष, एक विचारों के लोगों को
जी,
उन सबको जोड़ते हुए एक बड़ी लड़ाई की तैयारी।
मेरे को तो ऐसा एहसास हो रहा है कि लोग अब राजनीति से दूर होने लगे, जो आम जनता है,
आम आदमी। एक तो ये पूंजीवादी सरमाएदार प्रस्त राजनीति है एक है वाम पक्ष और ये हमारे जो लेफ्ट और ये ट्रेड यूनियन जो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, संघर्ष के प्रति लोगों में किसान आंदोलन साबित कर दिया वहां मोर्चा लगा के 13 महीने और सरकार को पीछे धकेला। आने वाले समय में ये सारी लड़ाइयां जुड़ेंगी और एक बड़ा संघर्ष बनके 2024 में इस मोदी एंड कंपनी के खिलाफ बड़ी एक लड़ाई बनेगी आने वाले समय में।
अच्छा, इस दिवस पे आप लोगों ने क्या अभी जो काले कानून सरकार लेकर आई है उनके खिलाफ मुद्दे उठाने की ज्यादा?
हाँ, काले कानून, महंगाई, रोजगार, ये निजीकरण की नीतियों पर रोक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती बाड़ी और आपसी अमन शांति भाईचारा और ये जो नफरत की राजनीति, इसको अलग थलग करने का है। मुख्य ये हमारे 5-6 पॉइंट हैं जिनको लेके ये हमारा अभियान
जी। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट सवाल जानना चाहता हूँ, क्या आप इस सरकार के खिलाफ है कि मोदी के खिलाफ है, क्या है इसके खिलाफ?
देखो, मोदी तो उसका एक वो है चेहरा
जी,
मुखौटा है मोदी तो
जी।
असल में जो बड़े कारपोरेट जगत जो है ना, जिसमें अंबानी, अडानी, अब अडानी साहब को कोई जानता नहीं था 2014 से पहले,
बिल्कुल बिल्कुल,
और वो मतलब बहुत पीछे था वो। आज वो दुनिया का दूसरे नंबर का पूंजीपति कैसे बन गया
जी?
ये अंबानी कैसे इतना बड़ा पूंजीपति बन गया
जी?
और देश की मतलब देश का एक ही एयरपोर्ट था, एयर इंडिया एक ही जो है ना भारत की हवाई सेवा थी, उसको कैसे टाटा को जो है ना बहुत सस्ते दामों में बेच दिया। आज रेल को अडानी, भारतीय रेल को अडानी रेल बनाया जा रहा है, बैंकों को ऐसे बेचा जा रहा है, कोयला खदान, BSNL जैसी देश की इतनी बड़ी टेलीकॉम क्षेत्र की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए कैसे जियो को बढ़ावा दिया इन्होंने
जी।
ये पूरे और शिक्षा को और स्वास्थ्य सेवाओं को कोरोना में दिखाई देगा, मतलब प्राइवेट क्षेत्र तो भाई मेरे रुपये कमाए और आगे कोई खड़ा पाए तो हमारी आशा पाई, हमारे डॉक्टर पाए, हमारे मेडिकल स्टाफ खड़े पाए, लोग खड़े हुए जो पब्लिक सेक्टर था वही खड़ा पाया ना, बाकी तो सब मुनाफा कमाने में थे।
अच्छा, एक चीज मैं पब्लिक एक चीज और मैं जानूंगा कि सरकार तो खुद ही कहती है, सरकार के मोदी जी तो खुद कहते हैं कि आत्मनिर्भर रहो, आत्मनिर्भर रहो, तो आत्मनिर्भर इस प्रकार से रहेगी जनता?
साम्राज्यवाद की अमेरिका जैसे साम्राज्यवाद की दलाली और उनकी कारपोरेट की जी जूरी करने से आत्मनिर्भरता नहीं आती। आत्मनिर्भरता आती है रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, जहाँ रोजगार मिले लोगों को, जहाँ महंगाई पे अंकुश लगे, लोगों की जीविका चले, वहाँ आती है आत्मनिर्भरता। आप लोगों तो रोजगार विहीन बना रहे हो, लोगों के जो ट्रेड अधिकारों को छीन रहे हो, आप जो लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन रहे हो।
मैं आपसे जाते जाते लास्ट सवाल मेरा ये वाला है आपसे कि जनता आप लोगों से बहुत उम्मीद लगा के बैठी है कि भाई ये CI2 और जो संस्था है, तमाम जो संस्था है, सरकार तो है ही श्रमिकों के खिलाफ, जनता के खिलाफ, क्या आप इसको काले कानून को समाप्त करा के ही रहेंगे?
देखो, हमारी लड़ाई स्पष्ट है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं, हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर ये सरकार ना माने तो सरकार को हटा के उखाड़ के फेंक देंगे, ये स्थिति बनेगी देश।
सरकार से आपकी लड़ाई ये है कि जो उल्टे सीधे ये काम कर रही है,
हाँ, ये जो जनविरोधी जितने भी कदम उनको वापस करो, हम ये कहें सरकार अपने जनविरोधी कदमों को वापस ले, जनहितैषी नीतियां लागू करे, रोजगार रोन्मुख नीतियां लागू करे, जनता के लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करे। अब कितने स्कूल बंद हो गए हरियाणा में, सरकार स्कूलों को बंद कर रही है
जी।
हमने हम भी 45-46 साल हो गए सामाजिक जीवन में काम करते, ऐसा कोई नहीं देखा, स्कूल खोलते तो मैंने देखे बंद करती है सरकार, देखी।
अच्छा सतमीर जी, मैं ये अपने अच्छी बात हमसे कही, हमारी दिमाग में नहीं थी कि आप जो स्कूलों के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से।
बिल्कुल, अभी हमने वहाँ जो है ना, हमारी जो कमलेश है प्रधान है, ये लाड़ी गांव है यार रोहतक में
जी,
कलानोर की तरफ जाते हैं तो उस स्कूल के अंदर जो है ना, उन्होंने मतलब टीचर ट्रांसफर कर दिए, मैथ का टीचर नहीं, इंग्लिश का टीचर नहीं, साइंस का टीचर नहीं, तो कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी? और वो क्या कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, ट्रांसफर करके टीचर्स के, और इन्होंने एक नई एक नीति लाए, उसको स्कूलों के अंदर कहा कितने बच्चे, कितने विद्यार्थी हैं, कितने क्या हैं, उसके आधार पे बच्चों को जो है ना, मतलब टीचर नहीं लाओगे आप, पूरा व्यवस्था नहीं करोगे तो क्या होगा? बच्चों की किताबें तक नहीं ले पाई है, ले पाए सिलेबस की
जी,
बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं स्कूलों में पूरे टीचर हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, पूरा सिलेबस मिले और बेहतर व्यवस्था की जाए तो बच्चे जो है ना, अब केरला गवर्नमेंट ने भी तो किया है
जी,
केरला गवर्नमेंट ने कितने स्कूल अपग्रेड किए हैं, सभी में तमाम सब्जेक्ट के टीचर हैं
जी,
और बहुत बेहतरीन व्यवस्था की, देश के अंदर सबसे बेस्ट व्यवस्था केरला गवर्नमेंट ने की स्वास्थ्य की और शिक्षा की।
तो सतबीर जी आज तो आपने कमाल ही कर दिया कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां एक बात में आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। अब हम आपसे आशा करते हैं कि अब आपसे हम कब संपर्क करें नई बात के लिए।
हाँ ठीक है, अगले हफ्ते कर लेते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी आपका।